ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष महान बच्चे हैं। वैसे तो सभी बच्चे महान हैं, जिन आत्माओं ने बाबा को पहचाना वो तो महान बन गए, लेकिन आप लोग महान में भी विशेष महान आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि हमको याद है कि एक बार हम सब कुमार अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे, ओम प्रकाश भाई भी थे, तो बाबा ने उस समय कहा था कि सभी कुमारों में नंबर वन कुमार ओम प्रकाश भाई है, अव्यक्त बाप दादा के साथ। तो उस फाउंडेशन के निकले हुए आप बच्चे हैं, तो सोचो कितना महान होंगे। जब फाउंडेशन इतना महान है तो उससे निकले हुए बाबा के हर रतन अति महान है, और महानता का आधार इस ज्ञान मार्ग में है निरंतर योगी बनना। जो आत्मा निरंतर बाप की याद में रह सकती है, जितना रहती है उतना ही वो आत्मा महान है, क्योंकि याद से निरंतर का कनेक्शन होने के कारण आत्मा को बाबा का संग लगता है। इसलिए आत्मा बाप समान बनती जाती है। इसीलिए याद का इतना महत्व है, भगवान के समान बनती जाती है। तो निरंतर याद के लिए विधि तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से छह प्रकार की हैं। उन छह प्रकार की विधि को आप अपना लो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। पहला है अमृत बेला पावरफुल हो, दूसरा है हर कर्म कर्म योगी बनकर करे, तीसरा है बाप के साथ आप रूह रिहान करें, जितना बाप दादा से आप रूह रिहान करेंगे उतना याद में सुख मिलने लगेगा। रूह रिहान कई प्रकार से कर सकते हैं, चाहे अपने पुरुषार्थ के बारे में चाहे आप किसी परिस्थिति के बारे में, चाहे सेवा के बारे में, जो कुछ भी आप चाहें बाबा से पूछ सकते हैं। तो तीसरा है रूह रिहान करो बाबा से, और चौथा है बाप दादा से सर्व संबंधों का सुख लो, सर्व संबंधों का सुख लेने से आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती। कोई इच्छा न होने के कारण निरंतर योगी बन सकते। पांचवा है आत्मक स्वरूप में टिक कर शिव बाबा को याद करो। रोज मुरली में सुनते हैं आत्मा समझकर बाप को याद करो। और छठा है बाप समान की स्थिति में स्थित होकर परम धाम में बाबा के साथ वहां से विश्व में लाइट माइट फैलाओ, विश्व का सैर करो, भक्तों की मनोकामना पूरी करो, दुखियों का दुख दूर करो, कईयों को कई प्रकार की प्रेरणाएं दो। ये छह प्रकार की विधि है जिसमें आप किसी न किसी में स्वयं को रख कर निरंतर योगी बन सकते हैं। पहला विधि बताया कि अमृत बेला पावरफुल हो, क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या का आधार अमृत बेला है। अगर अमृत बेला आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली अमृत बेला, तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से आपकी याद बनी रहेगी। जैसे पापा ने एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि जब आप अमृत बेले के लिए कि जब ट्रेन चलती है तो इंजन को मेहनत लगती है जब चलती है, और जब स्पीड पकड़ लेती है तो अगर इंजन चलना भी बंद कर दे तो भी काफी दूर तक पकड़ी हुई स्पीड की शक्ति से गाड़ी आगे चली जाएगी। ऐसे अमृत बेले अगर आत्मा ने पुरुषार्थ की स्पीड पकड़ ली तो सारा दिन निमित्त मात्र अटेंशन देने से निरंतर योगी बने रहेंगे। आपका अमृत बेला पावरफुल तब होगा कल से प्रयोग करके देखना। आपका अमृत वेला पावरफुल तब होगा जब आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प पावरफुल हो। पहला संकल्प शक्ति दिलाने वाला हो, क्योंकि पहले संकल्प का प्रभाव आपके सभी संकल्पों पर स्वतः पड़ता है। जैसे देखो, अज्ञान काल में अगर किसी के सामने कोई ज्यादा समस्या आती है किसी दिन, तो क्या कहते हैं कि आज सोकर उठते ही पता नहीं किसका मुंह देखा था जो ऐसा हुआ। तो जिस व्यक्ति या जिसका भी मुंह देखा था उसकी जैसी स्थिति थी उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। अगर आपका आंख खुलते ही पहला संकल्प पावरफुल हो, शक्ति दिलाने वाला हो, तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो पहला ऐसा कौन सा संकल्प है जो पावरफुल है, जो शक्ति दिलाने वाला है? वो है पहला संकल्प, आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प होना चाहिए, बाप दादा गुड मॉर्निंग। बाप दादा गुड मॉर्निंग, सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, ध्यान रखना, बाप दादा गुड मॉर्निंग। ले लो दुआएं, बाप की या माँ बाप की? माँ बाप की। अमृत बेले उठते दुआएं दोनों से लेना है, गुड मॉर्निंग दोनों से करना है, याद शिव बाबा को करना, लेकिन गुड मॉर्निंग दोनों से करना। तो आंख खुलते ही ऐसा कौन सा संकल्प है या ऐसी कौन सी विधि है जिससे दोनों से गुड मॉर्निंग हो जाए? क्योंकि जब आत्मक स्वरूप में टिकेंगे तो शिव बाबा से गुड मॉर्निंग होगी, फरिश्ता रूप में टिकेंगे तो ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग होगी। तो पहले ही संकल्प में आप आकारी भी बने और निराकारी भी बने, तब दोनों से गुड मॉर्निंग हो सकती। कई हैं, आंख खुली बाबा गुड मॉर्निंग या बाप दादा गुड मॉर्निंग, ऐसे किया काम पूरा हो गया। लेकिन नहीं, देखो मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग मीठे बाप दादा तक पहुंची भी है या हमने कर लिया बस पूरा हो गया? अगर गुड मॉर्निंग पहुंचेगी तब तो आपको रिस्पांस मिलेगा, तब तो शक्ति मिलेगी, तब तो वरदान मिलेगा। अगर आप आपकी गुड मॉर्निंग पहुंचती ही नहीं। आपने किया गुड मॉर्निंग लेकिन पहुंची ही नहीं, तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो। जैसे अभी कोई जा रहा है, उसको आप आवाज दो और वो आपकी आवाज ना सुने, तो क्या वो रिस्पांस देगा? कुछ नहीं ना। तो आपकी गुड मॉर्निंग बाबा तक पहुंच जाए, उसके लिए विधि यही है कि पहले ही संकल्प में निराकारी और आकारी दोनों बन जाओ। क्या विधि है वो बता रहे हैं, आज प्रयोग करके देखना। आज मीन्स अमृत वेला। आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प आना चाहिए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो, ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा, मीठे बाप दादा, गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो, ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही। आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो गई, और ब्राह्मण के नाते से ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग। जब तक आपकी ये गुड मॉर्निंग पहुंचे नहीं, तब तक आप बिस्तर नहीं छोड़ना, क्योंकि गुड मॉर्निंग पहुंचना ही जरूरी है। और आपकी गुड मॉर्निंग पहुंच गई है, उसका प्रूफ है। अगर पहुंचती है तो आपको पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति। बाबा को देखते ही आत्मा तो वैसे ही खुश हो जाती है, भगवान दिखाई दिया। और जब बाबा रिटर्न में वरदान देता है, तो उससे शक्तियां बहुत बढ़ जाती। तो पहले संकल्प में ये दोनों प्राप्त कर लो, तो आपका अमृत बेला पावरफुल हो जाए। इस पावरफुल विधि से आगे की दिनचर्या शुरू करो। अमृत बेला अगर पावरफुल नहीं बना पाए, तो आप कितना भी कोशिश करो, आप निरंतर योगी बन नहीं सकते। अगर अमृत पेला पावरफुल नहीं बना तो, इसलिए मुख्य फाउंडेशन ये, आपका पहला संकल्प जो बताया कि परम धाम से अवतरित होकर इस ब्राह्मण तन में प्रवेश किया है, ये संकल्प भी तब आएगा जब आप शाम को सोने के पहले सारे दिन का चार्ट बाप दादा को देकर एकदम क्लीन हो जाएंगे और बाबा की याद में सो जाएंगे तो फिर आंख खुलते ही वो संकल्प आ जाएगा। अगर चार्ट नहीं दिया है तो नहीं आएगा संकल्प, क्योंकि अगर चार्ट नहीं दिया तो आंख खुलते ही तीन प्रकार का संकल्प कोई ना कोई आता है। पहला संकल्प जो चार्ट नहीं देते हैं, जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले घड़ी देखते हैं कितना बजा है, और इसका रिजल्ट कितना खराब होता है आपको बताते हैं। दूसरा है कि अगर चार्ट देखकर नहीं सोए हैं तो जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव सारे दिन का है वही स्वप्न में आएगा और सोकर उठते ही वही याद आएगा। बाबा को तो याद आने का प्रश्न ही नहीं। और तीसरा, कोई उठ के बाबा गुड मॉर्निंग कहते हैं। आपको बताए सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन बाप दादा दोनों से गुड मॉर्निंग करना। तो जो सो करके उठकर घड़ी देखते हैं, चाहे तो आज प्रयोग करके देख लेना, वैसे अनुभवी होंगे, जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं वो जब योग में बैठेंगे तो हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद देखेंगे कितना बजा है, अभी कितना टाइम पड़ा है, कितना दीता है, वो घड़ी कॉन्शियस ही रह जाएंगे। टोटल भूल कर बाबा के पास बैठ जाएं, वो नहीं हो पाए। अनुभव होगा भी और नहीं हो तो आज प्रयोग करके देख ले। और जो ऐसे सो जाते हैं वो तो सब जानते हैं, सोकर उठते वही याद आए। इसलिए चार्ट देना माना कीचड़े को जला देना और बाबा से आगे की प्रेरणा ले ले। मान लो आपसे कोई भूल हो गई, बाबा को बता के क्षमा लेकर आगे के लिए शुभ प्रेरणा ले लो तो सोकर उठते वही याद आएगा। अगर क्षमा नहीं लिया है तो सोकर उठते ही जो भूल हुई है वही याद आएगा, और इतना मन खाएगा उस समय सुबह के समय कि आपका माथा भारी हो जाएगा, योग नहीं कर पाए। क्योंकि अमृत वेला समय प्योर होता है, छोटी भी गलती थोड़ी भारी लगने लगती है। इसलिए चार्ट देखकर सोना। दूसरी बात आपको बताया, कर्म योगी बनकर कर्म करो। कर्म योगी बनकर कर्म करने का आधार है जैसा कर्म वैसा संबंध बाप के साथ रखकर कर्म करो। मान लो मेहनत का काम है, तो जहां मेहनत का काम है वहां बाबा को दोस्त के रूप में ले। मेरा दोस्त सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, ये काम फटाफट हो जाएगा। तो एक बाबा की स्मृति से मन हल्का, दूसरा बाबा की स्मृति से आपके मन में रियल टचिंग आएगी कि क्या करना है, तीसरी बात, बाबा के स्मृति से ये रहेगा कि बाबा हमारे साथ है, काम हमारा हुआ पड़ा है। और जहां आपका ये श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हुआ कि हमारा काम हुआ पड़ा है, वो काम 100% हो ही जाएगा, क्योंकि बाबा के स्मृति के साथ का संकल्प है, इसलिए सिद्ध अवश्य हो। तो जैसा कर्म हो, मान लो माताएं रोटी बना रही, रोटी बनाते समय एक बार तो बाबा ने बहुत हंसाया था कि रोटी बनाते हो तो रोटी कैसी होती है, गोल गोल। तो शिव बाबा कैसा है, गोल गोल है। तो रोटी बनाते समय बाबा तो अपने आप याद आता है। दूसरी बात, जब रोटी बना रहे हो ये स्मृति में रखो, प्यारे ते प्यारे पिता को या भगवान को, जिसको 63 जन्म तक भोग लगाया और उसने खाया ही नहीं, आज मैं उसके लिए रोटी बना रही हूं, ये मेरे हाथ की बनी हुई रोटी प्यारा पिता परमात्मा खाएगा, भगवान खाएगा। ऐसे स्मृति से प्यार भर के बनाओ, फिर रोटी नहीं बनाओ, उसमें प्यार भरो। खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। ये जो किसी किसी की कंप्लेन रहती है, फलाना ज्ञान में नहीं चलता है, ये विरोध करता है, ये कंप्लेन खत्म हो जाए। अगर ज्ञान में नहीं चलने का पार्ट होगा तो चलो बीके नहीं बनेगा, लेकिन विरोध खत्म हो जाए। अगर ऐसे बाबा की याद का भोजन, तो जो भी कर्म करो कर्म योगी बनकर करो। आप चल रहे हैं, चाहे माँ बाप बनके बाबा को अपना बच्चा बना लो और बाबा को अपनी उंगली पकड़ा दो, बाबा मेरे साथ चल रहा है। बच्चा बना लो, कभी बच्चा बन जाओ, जैसा भी चाहे, जो संबंध प्रिय है, उस समय देखो हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है, किस बात में जा रही है, वही बाबा के साथ जोड़ लो, बहुत सहज है, कर्म योगी बन जाए। तीसरी बात है, बाप के साथ सर्व संबंधों का सुख। ये ब्राह्मण जीवन में बहुत आवश्यक है। मम्मा अमृत पहले योग में विशेष दो काम करती थी, एक बाप के साथ सर्व संबंधों का रस लेकर आत्मा तृप्त हो जाती, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती, कोई और इच्छा ही नहीं तो सिवाय मीठे बाबा की तरफ और कहां मन जाए, इसलिए निरंतर योगी। दूसरा, रूहों की सेवा करते, रूहों की सेवा विश्व की भी सेवा है, और रूहों की सेवा कि मम्मा को यज्ञ की जिम्मेदारी है। तो यज्ञ में मम्मा किसी के संस्कार को देखती थी, कमी कमजोरी को देखती थी, तो अमृत वेले मम्मा उस आत्मा को इमर्ज कर सकास देती। इस आत्मा की ये कमी दूर हो, ये आत्मा भी बाबा से पूरा वर्षा ले ले, ये आत्मा भी बाप के राइट हैंड है। सिर्फ स्थूल सहयोग नहीं दो, वो दो जरूर, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मनसा सहयोग दे, चाहे सेंटर पर, चाहे घर पर, चाहे कहीं भी, ये बहुत जरूरी है मनसा सहयोग। तो एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख लो। अब सुख लेने की विधि क्या है, किस विधि से लेंगे? एक है प्रैक्टिकल साकार में संबंध जोड़कर, साकार में, और एक है अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा से उस संबंध का सुख अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा ले। तो पहला है साकार में जोड़कर संबंध, साकार में ब्रह्मा के साथ या बाबा के साथ संबंध जोड़ो। किस रीति से? जो आत्मा जितना बाबा को प्यार करती है, अगर उतना ही यज्ञ को प्यार करती है, बाप स्नेही और यज्ञ स्नेही है, उसके लिए बाबा को याद करना सहज है, भूलेगा नहीं। अगर यज्ञ स्नेही बने हो तो, उदाहरण के रूप से आप देखो, अभी यहां आए हो आप लोग, जब वापस अपने घर जाओगे तो आपके मन में ये संकल्प होगा कि अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ मधुबन का यादगार लेकर जाए, बाहर से लेंगे, यहां से लेंगे, परिवार के लिए, और लेते हैं, ले भी जाना चाहिए। एक है आपने पूरा परिवार के लिए लिया, और एक है कोई एक सामान किसी एक के लिए विशेष लिया, मान लो बच्चे के लिए लिया, तो वो सामान जब तक आपके पास है, सामान देखते ही बच्चे की याद आएगी या नहीं आएगी? ऑटोमेटिक आएगी ना, याद करना नहीं पड़ेगा, आएगी, बच्चे के लिए लिया। ऐसे आप सब यज्ञ स्नेही अर्थात जो कुछ भी करो, पहले बाबा, उदाहरण के रूप से आप मान लो गए हो मार्केट में सब्जी लेने, आप 10 रुपए की सब्जी लिया, और जो चीज लानी थी घर के लिए लेकर आए, उसमें से किसी के लिए कोई एक विशेष प्रिय सब्जी थी और वो लिया, तो 10 रुपए वाली सब्जी बिल्कुल नहीं याद रहेगी, एक रुपए वाली जो किसी को विशेष प्रिय थी वो लिया है, वो देख देख कर उसकी याद आती रहेगी या नहीं, रहेगी या नहीं? ऐसे आप लोग जब कुछ भी करो, मान लो सब्जी लेने गए, 10 रुपए की सब्जी अपने घर के लिए लिया, उसमें से 1 रुपया की सब्जी सबसे पहले बाबा के लिए ले, आप प्रयोग करके देख, 1 रुपए की सब्जी बाबा के लिए ले, चाहे सब्जी लो या सेंटर पर पैसे दे, लेकिन पहले बाबा के लिए ले लो। मान लो 1 रुपए की सब्जी बाबा के लिए लिया, अब 10 रुपए की सब्जी घर वालों के लिए लिया, वो तो रोज लेते रहते। अब जो 1 रुपए की सब्जी बाबा के लिए लिया है, वो जब तक सेंटर पर ले जाकर नहीं दे दोगे, तब तक वो देख देख कर बाबा याद आता रहेगा या नहीं, बोलो, याद आता रहेगा या नहीं? आएगा ना। इससे सहज विधि कुछ है बाबा को याद करने की? कुछ भी करो पहले बाबा, लेकिन ऐसे उल्टा नहीं करना, पहले घर के लिए खरीद लिया, बाद में बाबा के लिए लिया, तो बाबा बिल्कुल नहीं याद आएगा। ये पूरा याद रखना, पहले बाबा, पहले बाबा के लिए करो, तब रहेगा आपके दिल में बाबा है, पहले बाबा फिर परिवार के लिए। आप देखो कुछ भी करो, बताता हूं, गेहूं पिसाने जाते हो, बाबा का हिस्सा निकालो, आप बाबा को सर्व संबंधों से अपना बनाओ, सिर्फ परम धाम निवासी नहीं है, अभी साकार में है, संबंध से बनाओ। कई कहते हैं भगवान हमारा बच्चा है, सब कुछ है, मानते हैं, लेकिन ये बताओ आपका जो बच्चा है जब स्कूल में पढ़ता है तो आप उसको यूनिफॉर्म सिलाते हो ना, जो स्कूल की ड्रेस है, फीस देते हो ना, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिलाया बच्चे को तो क्या उस समय आपको ये याद आया कि बाबा भी हमारा बच्चा है, उसके लिए भी यूनिफॉर्म चाहिए? नहीं ना। आपको संकल्प आना चाहिए, बच्चे के लिए यूनिफॉर्म सिलाया है, ले जाकर सेंटर पर बहनों को साड़ी तो दें, या उसमें यूनिफॉर्म से कुछ हिस्सा निकाल करके पहले सेंटर पर तो दें। अगर आपको ये संकल्प ही नहीं आता है तो किसने कहा आपने बाबा के साथ संबंध जोड़ा? कैसे बाबा से आपका निरंतर योग रहेगा? आप फीस देते हो, बाबा आपका बच्चा है, क्या उसी समय उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर सेंटर पर देते हो? नहीं। क्या समझते हो, सेंटर तो आश्रम है, ये हमारा घर है। अगर सेंटर को अपना घर नहीं समझा तो कैसे बाबा को अपना समझ पाओगे? इसलिए अगर सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़कर सुख लेना है तो यज्ञ स्नेही बनो। सिर्फ सूखा योग लगाने से योग लगने वाला नहीं है। मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, शिव बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन इस तरह से योग लगाते लगाते अनुभव कर लिया कि क्या है, कितनी देर बाबा याद रहता है। इसलिए बाबा को याद करने के लिए यज्ञ स्नेही साथ साथ बनो, संबंध एक साकार में यज्ञ स्नेही बनो, फिर निराकार या आकार में याद करना सहज हो जाए, संबंधों का सुख लेना सहज। ये जो गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो, गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो, यादगार में देखो जो गोप गोपिकाएं थी उनकी कहानी देखो कि उनके घर में मक्खन होता था तो सबसे पहले उनको संकल्प आता था ये मक्खन मेरा कृष्ण को खाए, उसको खिलाए, उसके लिए रखती थी, तब उनको सुख भोगा अनुभव होता था। और हम सब गोप गोपी नहीं है, कौन है आप सब, गोप गोपी है या नहीं है? है ना? अगर गोप गोपी हैं तो गोपी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो तो बाप के बच्चे बन गए, स्टूडेंट टीचर हो गया, सदगुरु से फॉलोअर्स हो गए, लेकिन जो आपका पूरा यादगार जो बना हुआ है वो गोप बल के गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं का है, वो हम आप सब। अति इंद्रिय सुख अब मिलेगा, सतयुग में भौतिक सुख है, अति इंद्रिय सुख नहीं है। इस अति इंद्रिय सुख के आगे भौतिक सुख तो कुछ भी नहीं है। जरा सा सुख का अनुभव होता था द्वापर युग में तो राजाएं अपना राजपाट छोड़ देते थे, जरा सा सुख के कारण भगवान का साक्षात्कार हो जाए। और आपके साथ तो मीठा बाबा साक्षात रूप में, अनुभव करो साथ का। क्लास से उठोगे ऐसे नहीं उठो तुरंत, बाबा क्लास पूरा हुआ अच्छा चलो अब हम और आप साथ साथ चलते हैं, बाबा चलो एक सेकंड संकल्प करो चल पड़ो बाबा के साथ, साकार में चलो, चाहे निराकार को रखो चाहे आकार को रखो लेकिन साथ में रखो। अगर दिल का प्यार है तो निराकार आकार साकार का अनुभव कराएगा। कि कुछ दिन पहले मुरली चली साकार में अनुभव, लेकिन यज्ञ स्नेही बनो, यज्ञ स्नेही से परमात्म स्नेही बनना सहज हो जाएगा। पहले की जो अब दादियां कहेंगे पहले की जो बहनें थी उतना उनको ज्ञान नहीं आता था, आत्मा समझकर शिव बाबा को भी याद करना नहीं आता था, लेकिन यज्ञ स्नेही थी। यज्ञ स्नेही के कारण साकार स्नेही के कारण दो तीन दिन पहले मुरली चली है, साकार स्नेही के कारण निरंतर योगी बने। साकार स्नेही ने सर्व समर्पण कराया, इसलिए योग में पहला है यज्ञ और साकार स्नेही, फिर चौथा है आत्मा समझकर बाप को याद करो। जब आप पहले यज्ञ स्नेही बनो सब तरफ से मन हट जाए, बस पापा और यज्ञ रह जाए, फिर अशरीरी होने का अभ्यास सहज चल जाएगा। अभी जैसे आप संकल्प करते हो कि मैं मन बुद्धि संस्कार सहित ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, संकल्प कर रहे हो ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ और मन पता नहीं किस देहधारी को याद कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि यज्ञ स्नेही नहीं है। इसलिए यज्ञ स्नेही में पहले मन को कन्वर्ट करो, यज्ञ स्नेही से बाबा स्नेही बन जाएंगे, परमात्म स्नेही बन जाएंगे, फिर स्नेही बनने से अशरीरी होने का अभ्यास सहज चल सकेगा, नहीं तो अशरीरी बन नहीं पाएंगे। अशरीरी बनने के अभ्यास के लिए सब कुछ भूलना पड़ता है, ये देह भी भूलना पड़ता है। बस मैं नंगी आत्मा आई हूं, नंगी आत्मा जाऊं, मैं हूं ही आत्मा, चैतन्यता आत्मा में है, ये पांच तत्व है। लेकिन पहले परमात्म स्नेही बनो, यज्ञ स्नेही बनो, फिर अशरीरी होने का अभ्यास आपका बढ़ जाएगा। जब अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ने लगेगा, आत्मक स्वरूप में टिक कर शिव बाबा को याद करना शुरू करोगे, फिर आपकी आत्मा से सब मैल हटने लगेगी, पुराने संस्कार सब खत्म होने लगेंगे, आत्मा में चमक आती जाएगी, हल्कापन आता जाएगा, आत्मा धीरे धीरे अपने को हल्का महसूस करने लगेगी, और जितना हल्का महसूस करती है उतना ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन निवासी हूँ या मूल वतन निवासी हूँ, ये जितना हल्कापन आएगा उतना उस स्थिति में, चाहे मूल वतन में चाहे सूक्ष्म वतन में स्थित हो पाए, जितना हल्का बने, और हल्का बनेंगे ही शिव बाबा की शक्ति से। आत्मक स्वरूप में टिक कर जितना याद करेंगे उतना बाबा की शक्ति आप में आती है, सब कट निकलती है। लेकिन इसके लिए बताया आपको यज्ञ स्नेही परमात्म स्नेही जरूरी, एक ही चीज नहीं। कई क्या करते हैं, यज्ञ में पैसा दे देते हैं, पर ठीक है क्लास में भी नहीं आते, कभी कभार आए, योग कभी कर लिया, उनका भी योग लगने वाला नहीं। दोनों चाहिए, यज्ञ स्नेही भी बनो, परमात्म स्नेही भी, फिर आपका आत्मक स्वरूप में टिक कर पाप को याद करने का सहज हो जाए। और जब ये प्रैक्टिस पड़ गई, शरीर से डिटैच होने की, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, ये डिटैच होने की प्रैक्टिस, फिर हमें परम धाम में पाप के पास बैठने की, स्वतः ही वो स्वरूप बन जाए, पाप आपके पास जितनी देर बैठो संग का रंग लगेगा, फिर बाबा के साथ साथ विश्व का सैर करो, विश्व को लाइट माइट दो, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो, दुखियों का दुख दूर करो। उस समय आप जो भी संकल्प बाबा से कंबाइंड होकर करेंगे वो वाइब्रेशंस के द्वारा फैल कर प्रैक्टिकल साकार स्वरूप ले लेगा, अर्थात वो हो जाएगा, क्योंकि आत्मा बाप समान की स्थिति में स्थित, दोनों जैसे कंबाइंड हो गए। तो ये छह प्रकार में आप अपने को अभ्यास बढ़ाते रहो तो निरंतर योगी बन जाए, और बनना ही है। सिर्फ मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, ये तो याद करना ही है, लेकिन सिर्फ ये नहीं हो पाएगा जो पांचों और बताया है, ये भी अभ्यास में चलाओ तो बहुत सहज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।